आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश है भारत के समाचार। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में 3 से 4 महीने बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में अभी से विरोधी पक्ष पर राजनीतिक हमले करने शुरू कर दिए हैं। 19 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एयरपोर्ट से नदिया जिले के रानाघाट में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर घुसपैठियों को बसाने सहित कई आरोप लगाए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के हमले को अपने नवीनतम मुफ्त मेडिकल सेवा स्कीम सेवाश्रय के प्रचार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में लोगों, खासकर मटुआ आदिवासी समुदाय के नाम कटने के विरोध को आधार बनाकर विफल करने का प्रयास कर रही है। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने असम के कई इलाकों में जनसभाएं की और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां भी उनके हमले का मुख्य बिंदु कथित घुसपैठिए ही रहे।
ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है।
जवाब में कांग्रेस अपने आक्रमण का मुख्य आधार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, वोट चोरी और अदालत द्वारा नेशनल हेराल्ड केस को निरस्त किया जाना बना रही है। लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने रविवार को इन 3 मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। देश के करोड़ों ग्रामीण लोगों का रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस संसदीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा।
बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना विरोधी युवा नेता उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश में तूफान खड़ा कर दिया है। उस्मान हादी के जनाजे में शनिवार को लाखों लोग शामिल हुए। बांग्लादेशी मीडिया ने हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम को भारत भगाए जाने का दावा किया है। हादी के मौत के विरोध में इकबाल मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने शुक्रवार को बिना पुल से भारत के बॉर्डर तक मार्च निकाला और भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शेख हसीना को सौंपने की मांग की। चिट्टागोंग में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर भी कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। भारत विरोधी भावनाएं और बॉर्डर के नजदीक सरगर्मियां देखते हुए भारत ने चिट्टागोंग स्थित अपना वीजा कार्यालय बंद कर दिया है और बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। सेना की पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा भी किया है। महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनावों के नतीजे दोहराते हुए नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा, शिवसेना शिंदे और NCP अजीत के महायुति गठबंधन को फिर से बंपर जीत हासिल हुई है। रविवार को जारी हुए 288 सीटों के नतीजों में महायुति को 213 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में भाजपा 118 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 सीटें और एनसीपी अजीत को 37 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के हिस्से में केवल 51 सीटें ही आई हैं। इनमें कांग्रेस 31, शिवसेना उद्धव को 9, शरद पवार की एनसीपी को केवल 10 सीटें ही मिली हैं। 24 सीटें अन्य को मिली हैं जिन्होंने स्थानीय अघाड़ी बनाया था। उत्तर भारत, खासकर राजधानी दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के मुद्दे को अरावली पर्वतमाला खनन मामले ने और भी गर्मा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार की परिभाषा पर मोहर लगाने के महीने भर के भीतर अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए दर्जनों नागरिक संगठनों ने इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी सेव अरावली और सेव अरावली सेव AQI जैसे हैशटैग छा गए हैं। पर्यावरणविदों और हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण समुदायों ने 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से एक दिन के सांकेतिक उपवास के साथ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। ये नागरिक संगठन 100 मीटर की ऊंचाई आधारित नियम को खारिज करने की मांग कर रहे हैं, जो निचली पहाड़ियों को बिना रोक टोक खनन के लिए खोल सकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण के एक आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला के 90% से अधिक हिस्से को बाहर कर देता है। अकेले राजस्थान में 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी के 8.7% ही इस सीमा को पूरा करती हैं। 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है, उत्तरी भारत की रीढ़ और फेफड़े माने जाते हैं। यह एक ढाल के रूप में थार रेगिस्तान से रेत और धूल को रोककर बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण को रोकती है, कीमती भूजल एक्वीफर्स को भी रिचार्ज करती है और दिल्ली NCR क्षेत्र को परेशान करने वाले वायु प्रदूषण को फिल्टर करती है। अरावली पर्वतमाला में फैले 37 जिलों के समुदायों के लिए इसके जंगल जरूरी जलाऊ लकड़ी, चारा, औषधीय जड़ी बूटियां और पानी के विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इन दावों को भ्रामक बता रहे हैं।
मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्टर। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का एक गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है।
लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी अरावली के संरक्षण के लिए लोगों का साथ दे रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को मुद्दे की गंभीरता समझने को कहा है।
जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियां समाप्त हो गई, पता नहीं देश में क्या होगा। एक्सपर्ट भी राय दे सकते हैं, इसे मैं अपील करना चाहूंगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, इसको प्रतिष्ठा के सवाल नहीं बनाए।
और अब समाचार खेल जगत से। विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम ने रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की धारदार गेंदबाजी के चलते श्रीलंका ने धीमी लेकिन मजबूत शुरुआत की, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी से दबाव बढ़ने के कारण श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी। विश्मी गुणरत्ना ने सबसे अधिक 39 रन बनाए। भारतीय टीम ने 15वें ओवर में महज 2 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच जेमिमा रॉड्रिक्स ने एक बार फिर बेहतरीन पारी खेलते हुए 44 गेंदों में 10 चौकों की सहायता से नाबाद 69 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाए। तो ये थे अब तक के समाचार, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।